प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
ज्योति निरंजन काल अर्थात ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। आप जी ने जो ये ब्रह्मांड देखा, अब ये समझो अब ये हो गया है, अब ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है ये समझो एक ब्रह्मांड है। और ऐसे पांच ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाकर इसने एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे ऐसे पांच पांच के चार ग्रुप बनाकर चार महाब्रह्मांड बना रखे हैं। इस प्रकार ये 20 ब्रह्मांड इन चार ग्रुपों में यहां अलग से रोक रखे इसने, और 21वां ब्रह्मांड ये है इसका अपना जहां ये स्वयं रहता है। और यहां पर भी इसने एक और रचना कर रखी है, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अनुलोक और नकली अनामी लोक। यहां पर ये तपक्षला है और ये वज्र कपाट कुलुप है, ये इसने बंद कर रखे, अगर कोई नहीं आ सकता, बहुत काल लोक की है ये। और इधर द्वादश अचिंत भक्तों का निवास है, यहां काल के साधनक करने वाले अच्छे भक्तों को यहां रखता है, उन 12 को फिर नीचे गुरु बना बना भेज देता है। ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, सारी उम्र गलत साधना करवाते हैं, अपने पुण्य क्षीण करके फिर नरक चले जाते हैं। और ये है रास्ता ऊपर जाने को, तो सतलोक जाने का रास्ता है। यहां ये काल स्वयं रहता है, इसमें कोई भी नहीं फटक सकता, केवल परमात्मा कबीर जी और उसके सत साधक इसमें से जा सकते हैं। अब ये देखिएगा, अब ये है 21 ब्रह्मांड काल के, इतना ही ये मालिक है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस एक ब्रह्मांड में और केवल इन तीन लोकों पर, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल लोक पर, एक एक विभागीय प्रभु है, स्वामी है। अब इनकी स्थिति से आप परिचित हो जाओगे। और ये ऐसे ऐसे ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड है काल के, 20 में तो ये ऐसी रचनाएं हैं और 21 में इसने अपनी व्यवस्था कर रखी है। अब देखिएगा, ये आएगा आपका पूरा समझ में। अब ये है 21 ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड है ब्रह्म सरपुरुष के, सरपुरुष जिसे कहते हैं 21 ब्रह्मांड, ये क्षेत्र संतुल ये है बस। और ये है बाहर ये 7 सर्व ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, जिसे परब्रह्म भी कहते हैं, ये 7 सर्व ब्रह्मांड है अक्षर पुरुष के ये 7 संघ। और ये देखिएगा पूर्ण परमात्मा जो असंग ब्रह्मांडों का स्वामी है। अब इस पूर्ण परमात्मा के असंग ब्रह्मांडों की तुलना में अब ये काल का लोक, ये 21 ब्रह्मांड तो एक बिल के समान है, बहुत छोटा सा क्षेत्र हो जाता है उसकी तुलना। और इस 21 ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड के केवल तीन लोकों में रज गुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी एक एक विभागीय मंत्र हैं, मंत्री हैं, इतने स्वामी हैं। यहाँ पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक और पाताल लोक इनकी अलग अलग राजधानी है, केवल इन पर ये कंट्रोलर है। और ये ऐसे ये पूरा ब्रह्मांड और भी बहुत शेष है जो काल स्वयं कंट्रोल करता है। और ऐसे ऐसे ये 21 ब्रह्मांड है काल के, और इन ये 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के सर्वपुरुष के, ये 7 संघ ब्रह्मांड ये अक्षर पुरुष के, और ये असंघ ब्रह्मांड इंक्लूडिंग ब्रह्म और परब्रह्म सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष समेत सबके ऊपर कंट्रोलर है। ये परम अक्षर ब्रह्म के असंघ ब्रह्मांड है, ये वो कुल का मालिक है। अपने आत्मा मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए, और हम अपने रोजगार पेट के लिए अपने बच्चों को लगभग 16 वर्ष पढ़ाते हैं और उनको ढेर सारे सब्जेक्ट याद कराए जाते हैं, और उनका कितना लाभ है 2 रोटी के लिए, वो भी कितना प्राप्त हो रोजगार तो हो ना तो ना भी हो। और अब हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो हमने पढ़नी चाहिए, ये ज्ञान यज्ञ हो रही है, इस ज्ञान यज्ञ का पुण्य भी आपको प्राप्त हो रहा है, श्रोता को भी और वक्ता को भी। और ज्ञान से फिर आपको वो वास्तविक लाभ मिलेगा जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि गर्व में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और उस ज्ञान यज्ञ से सभी ये कर्म समाप्त हो जाएंगे, तेरी शंका का नाश हो जाएगा, और फिर भक्ति करने में आनंद आएगा, उसका कुछ सुचारू रूप बनेगा। अब हम आते हैं 15 में जाके 16 और 17 श्लोक में, ये देखिएगा जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 15वां अध्याय, ये 16वां श्लोक है। दिवौ इमौ, दिवौ माने दो, इमौ माने इस, लोके माने संसार में, पुरुषो माने प्रभु स्वामी है। कौन इस संसार में? पृथ्वी वाले लोग काल ब्रह्म सर्वपुरुष के और अक्षर पुरुष के, सर्वपुरुष के 21 ब्रह्मांड और अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड, ये एक पृथ्वी वाला लोक बोला जाता है। इस लोक में दो पुरुष हैं, पुरुष माने प्रभु है, एक सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष, एक सर अक्षर चय एम सरे सर्वाणी भूतानी, यानी इनके दोनों के लोकों में सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों में सभी प्राणियों के सथूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अक्षर यानी अविनाशी कही जाती है। इन्हीं के शब्दों में अनुवाद पढ़ेंगे 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु है, और सभी प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब देखो सर्वपुरुष कहो या इसको अक्षर पुरुष भी कह सकते, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो हैं, ये दो प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, इसको हम यहां भी लगा सकते हैं। और ये दोनों के लोकों में जितने प्राणी हैं, अब ये स्वयं भी ये तो नाशवान है और जीवात्मा तो वैसे ऑटोमेटिकली अविनाशी कहा जाता है। अब 17वें में कंसेप्ट क्लियर कर दिया, उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वास्तव में जो श्रेष्ठ प्रभु है वो तो अन्य है, इन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, उत्तम पुरुष है वो पुरुष तो और ही है जो सही है श्रेष्ठ है। और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान यानी परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा अच्छी आत्मा कहा जाता है। यह लोकचर्यम आविश्य विभक्ति अव्यश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अविनी के शब्दों में उत्तम पुरुष, तो अन्य ही है, वो पुरुषोत्तम यानी सही भगवान से परमेश्वर तो कोई और ही है, इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सर और अक्षर पुरुष से वो कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी जो मूल रूपी परमात्मा है, ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। और यहां देखिएगा, यहां विचलित कर देंगे आपको कि गीता ज्ञान दाता अपने बारे में भी तो कह रहा है 18वें श्लोक में, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोके वेदे लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब यहां ये क्या कहना चाहता है पुणात्मा, देखिएगा। कि मुझे तो लोक वेद के आधार से, मुझे लोक वेद, लोके वेदे, लोक वेद कौन सा होता, दंत कथा, एक हियर से स्टोरी, मुझे तो दंत कथा लोक वेद के आधार से, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, क्योंकि जितने मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनसे मैं तगड़ा हूं, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे मैं उत्तम उभरा हुआ हूं, मजबूत हूं, ताकतवर हूं, और इसलिए मुझे मेरे अंतर्गत जितनी प्राणी स्थूल शरीर में है या जीवात्मा है उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन पुरुषोत्तम तक कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पुण्यात्मा वही परमेश्वर है जो परम अक्षर परम है, वो कौन है, वो कबीर देव है जो सतलोक से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं से मिलता है, उनको फिर वो ज्ञान समझाता है, अपने सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी उनको बताता है, फिर वो संत उस परमेश्वर की महिमा को सुनाते हैं। अब वो पूर्ण परमात्मा वही हमारी आयु को बढ़ा सकता है, वही हमें हमारी मृत्यु हो जाती है काल से दूतों से छुटवा कर वापस ला सकता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अब क्या बताया है, अब ये आत्मा परमात्मा से परिचित हो जाने के उपरांत फिर ये कहती है परमात्मा, क्योंकि काल ने हम सभी आत्माओं के साथ इस मन को जोड़ दिया, इस मन को इनके साथ लगा दिया, और ये मन तत्व ज्ञान को स्वीकार करना नहीं चाहता, और बकवाद कितनी करवा ले इसने। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जैसे परमेश्वर की वाणी में आया है, मसा घटे न तेल बजे विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख, के पूर्ण परमात्मा पूर्ण सतगुरु जो कबीर परमेश्वर स्वयं आए थे या फिर अपने किसी दास को अपनी पावर दे देते हैं, तो उससे फिर हमें वो लाभ प्राप्त होता है जो पूर्ण परमात्मा ही दे सकता है। मैं तो दे दी है बाल में याने नूम, तो दे दी है बाल में याने नूम, तो दे दी याने नूम, तो दे दी है बाल में याने। अब इस मन के आधार से ही, मन के अनुसार चलकर ऋषि महर्षियों ने वेदों को गीता को पढ़ा पर समझ नहीं सके। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ सब जठ काणे नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ सब जठ काणे नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने। जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नू, जा सतगुरु सरना लीजे जो बेटे जम तलवाने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरता दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहब की हरि आए हरि आने नू, सर्व कला सतगुरु साहब की हरि आए हरि आने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। मत जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दी। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुलमाने नू, शील संतोष विवेक विचारो दूर करो दुलमाने नू, ज्ञान करा छे ज्ञान दी तुरिया कोई जाने पान रसाने नू, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू, महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू, गरीब दास सुन भवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने। आत्मा अब पछता रही है और रो रही है कि परमात्मा मेरे को तो इस मन के साथ जोड़ दिया, ये मेरा मालिक बना दिया, और इसके मन के मते चल करके हमने पता नहीं कितनी कठिन साधनाएं की, गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने लू। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद सफर है। अब ये मंत्र बता रखा है पूर्ण परमात्मा के पाने का। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ण है, इनके लिए स्पष्ट कर रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी तत्वदर्शी संत बता सकते हैं। और वो तत्वदर्शी संत कहां से बताएंगे? वो तत्व ज्ञान को जानते हैं जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है, चौथे जाएंगे 32वें श्लोक। अभी तक गीता पढ़ा करते थे, एक तरफ तो 8वें जाके 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है बस, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो श्री छोड़ कर जाता है यानी अंतिम सांस तक इसका जाप करता है, वो ब्रह्म से मिलने वाली जो उच्चतम सती थी यानी ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। अब यहां तो स्पष्ट कर गीता ज्ञानदाता मेरा तो एक ओम अक्षर है, फिर वहां किसके बारे में कहा है ओम तत्सत ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है इतनी निर्देश है। कहते या समझिया ना पूछा जो शब्द जो ठिकाने का शब्द था जो भी सही मंत्र था उसकी तरफ नजर ना गई किसे की। गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने नु, फिर क्या बताती है जब फुरमान धनी का आवे कौन रखे घर जाने। जैसे कहते हैं आप जी के आयु समाप्त होगी और काल के दूत आपको लेने आ गए, क्योंकि उतारना ही है उनका तो निर्धारित समय है, तो वहां आपकी आयु को कौन बढ़ा सकता है। जा सतगुरु का शरण लीजे जो मिटे जम तो लगवाने नू। कहते उस सतगुरु की शरण दे जो जम के तलवाने को यानी जम के संबंध को वापस कर दे, ले जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से अपनात्मा। जम का तलवाना माने बुलावा, काल के दूत लेने आवे और उनको वापस मोड़ दे। कहते उस समर्थ का उस सतगुरु का शरणा दीजिए जब फुरमान धनी का आया को रख घर जाने। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तल बने नू, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने। जब इस आत्मा के समझ में आ जाता है ना, फिर कहती है पहले हमने डोले डोए और ये समझ में ईव आई बात क्या बताते हैं। एक दो रोटी के जुगाड़ की खातर कहते ना जाने कहां कहां भटकते हैं ये संत भी और ये भोली आत्माएं भी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तुम फिरता दाने दाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की वो हरि आए हरि आने। अब कबीर परमेश्वर जी आए थे, ये गरीबदास साहिब जी की वाणी दास बोलकर सुना रहा जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। गांव छुड़ाने जिला जंदल हरियाणा, उससे उस समय ये प्रांत नहीं बना था, सन 1727 में, और हरियाणा प्रांत बना सन 1966 में। सन 1727 में ये बोला था गरीबदास साहिब जी ने कि हरि आए हरियाणे नो, कि वो पूर्ण परमात्मा सच पुरुष परम अक्षर ब्रह्म यहाँ हरियाणे में आए, और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से चलकर गद्दी कर पाए। अपने उस अच्छी आत्मा गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के सतलोक गए, सचखंड दिखाकर वापस छोड़ दिया। आंखों देखा उस परमेश्वर का, सभी ऊपर के ब्रह्मांड और पूरी समर्थता गरीबदास साहिब जी ने फिर अपनी लिपि बंद करवाई। तो अपने आत्माओं मासा घटे ना चल बधे विदना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु बैठ कर ऊपर मार्ज देख। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है और आपका सौभाग्य है कि आपको वो परमात्मा का प्रकाश हो रहा है, उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, इसका लाभ उठाओ। कहते ये बातें कर्ण सुन की नहीं, ये कर पाठ की है। یہ نہیں ہم نے کہہ دیا تم نے سمجھا ہوا ہوا کر کے، نہیں، اس میں ایک ایک پوائنٹ پر عمل کرنا ہے اور پار کو جانا ہے. بولو ستگرو جی جے.
پرم پتا پرماتما پورن برہم سرو سرشٹی رچنہار کل مالک کبیر دیو جی کبیر صاحب جی، یہ ہم سبھی پرانیوں کے ایک ماتر جنک ہیں، یہ ہمارے پتا ہیں، یہ کل کے مالک ہیں. ہم جس لوک میں رہ رہے ہیں یہ کال کا لوک ہے، اور کال کے لوک میں جیو کو سکھ سپنے میں بھی نہیں ہو سکتا. ہم جہاں رہا کرتے تھے وہ ستھان بہت ہی سکھ میں تھا، وہاں دکھ نام کی وستو نہیں تھی. ہم اپنی غلطی کے کارن اس سکھدائی ستھل کو چھوڑ کر، اپنے مالک اپنے پتا کو چھوڑ کر، ہم اس ویلین کے ساتھ آگے، اس خلنائک برہم کے ساتھ یہاں آگے. اور اس نے ہمارے ساتھ اب کیا سلوک کر رکھا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے یہ بھول ڈال دی کہ کوئی پورن پرماتما ہے یا نہیں. اور پورن پرماتما اس کال دوارا پریرت اگیانی رشیوں نے اس برہم کو ہی سروے سوا بتا دیا. سب سے پہلا کام اس نے کیا کہ نام و نشان مٹا دیا اس پرم پتا کا جو ہمارا سب کا مالک ہے، جو ہمیں سکھ دے سکتا ہے، کیونکہ اس کا سوارتھ نہیت ہے. یہ نہیں چاہتا کہ کسی پرانی کو یتھارتھ گیان ہو، اور یہ اس پرماتما کی بھکتی کر کے میری جال سے نکل نہ جاویں، یہ چاہتا ہے. اسی کارن سے پرمیشور نے سبھی سدگرنتھ ٹھیک لکھوا رکھے ہیں، اس کال سے بھی بلوا رکھی ہے، جیسے شریمد بھگوت گیتا، اور رشی مہرشیوں کو بھی پرماتما کبیر دیو جی آ کر ملے، کیونکہ یہ بھی انہی کے بچے ہیں. پرتھم ستیوگ کے لاسٹ میں جب سرشٹی پرارمبھ ہوئی، پرمیشور آئے، برہما جی کو ملے. برہما جی کو اپنا نام پرماتما نے اگنی دیو بتایا، کیونکہ پرمیشور جیسے ویدوں میں اگنے تنورسی، اور یہ کال کی پریرنا سے یہ جتنے بھی رشی مہرشی ہیں اس اگنی شبد کو اگنی دیو نام سے پوجتے رہے. اور ویدوں میں اگنی نامک یہ جو شبد ہے یہ پرماتما کا بودھک ہے. विशेष कोई प्रकरण में अग्नि माने आग अलग बात है, नहीं, अत्यधिक स्थानों पर अग्नि माने परमेश्वर अर्थ होता है. तो ब्रह्मा जी ने वेदों को जैसा काल ने उसको समझाया, परमात्मा का नाम हटा के अग्नि माने अग्नि देव नाम से प्रसिद्ध कर दिया. अग्नि देव जो यज्ञों का देवता बता दिया कि अग्नि देव यज्ञों का देवता है, और ब्रह्मा यज्ञों को अत्यधिक करता था, इसलिए परमेश्वर ने आकर बताया कि मेरा नाम अग्निदेव है. ब्रह्मा जी बहुत प्रभावित हुए. ब्रह्मा जी को परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, बहुत ज्ञान दिया. ब्रह्मा जी बहुत प्रभावित हुए और परमात्मा से प्रथम नाम प्राप्त किया. प्रथम नाम ब्रह्मा जी को देकर परमेश्वर फिर विष्णु जी के पास आए. अब विष्णु जी को भी बहुत ज्ञान समझाया. विष्णु जी वैसे ही अच्छे स्वभाव के स्वामी हैं, बहुत आदर किया परमात्मा का, बहुत ध्यान से ज्ञान सुना, बहुत प्रभावित हुआ और प्रथम नाम उपदेश लिया कबीर परमेश्वर से. फिर परमेश्वर शंकर भगवान के पास आए, शिव जी तमोगुण शिव जी के पास है. उन्होंने भी कबीर परमेश्वर जी का, अर्थात एक ऋषि रूप में प्रगट संत का, उस परमेश्वर का बहुत सत्कार किया. तो शंकर भगवान को भी परमात्मा ने यह सृष्टि रचना का ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान समझाया। शंकर भगवान बहुत प्रभावित हुए और परमेश्वर से उपदेश प्राप्त किया। अब तीनों देवताओं ने परमात्मा से उपदेश लिया। प्रथम परमेश्वर प्रथम मंत्र में ये पांच नाम दान करते थे जो आप जी को सात नाम दे रखे हैं। उसके बाद परमेश्वर कबीर देव जी यहां पृथ्वी लोक पर आए, या कोई भी परमात्मा से परिचित प्राणी नहीं मिला। अब पीछे से क्या हुआ कि परमात्मा ने सोचा कि अब उनको दूसरा नाम देता हूं, सतनाम देकर आऊंगा ब्रह्मा विष्णु महेश जी को। अब पीछे से काल ने सोचा कि यदि ये तीनों पुत्र और इस जोग जीत की बातों में आ गए, यानी काल परमेश्वर को नहीं पहचान सका, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र जोग जीत के नाम स्वरूप से प्रकट थे। तो पीछे से काल ने सोचा कि ये तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश यदि इसकी शरण में चले गए, ये सभी प्राणियों को सत्य ज्ञान बता देंगे और तेरा लोक खाली हो जाएगा। इसलिए उस काल ने अंतःकरण प्रेरित किया उनका, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और अंदर से एक ऐसी प्रेरणा कर दी कि ये झूठ बोलता है, ये बेप्रमाणित बातें कर रहा है। क्योंकि वेदों का ज्ञान काल भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को विपरीत अर्थ कर रखा था, जिस कारण से ब्रह्मा जी ने जब परमात्मा दोबारा उनसे मिलने गए अरुचि दिखाई और कहा, ऋषि जी आपकी बातों का वेदों में कोई प्रमाण नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा ही भेद है, पर मैं वेदन में नाही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं ये चारों वेद जानते नहीं। अब ब्रह्मा जी ने काफी विवाद किया, वाद विवाद किया कि नहीं, इन चार वेदों से अलग कोई अन्य कोई वेद नहीं, कोई सूक्ष्म वेद नहीं। अपुणात्मा और परमात्मा ने समझ लिया कि इनको इनकी बुद्धि काल ने फेर दी। फिर विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी ने भी यही बात दोहरा दी कि ऋषि जी हम आपका सत्कार करते हैं, लेकिन हम आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आप बेप्रमाणित बातें कर रहे हो। आप परमात्मा को साकार बता रहे हो, वेदों में निराकार लिखा है। अब परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे, एक न भूला दो न भूले, भूली सब संसारी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल प्रेरणा से वेदों के अर्थों को विपरीत ही याद किए हुए थे। तो परमात्मा कबीर जी वहां से चल पड़े कि काल यहां भी पहुंच चुका है। फिर भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव ने कहा कि ऋषि जी मैं समाधिस्थ होता हूं और बहुत ऊपर तक मेरी समाधि चली जाती है, और जिस बात की व्याख्या आप करते हो कि वो सतलोक है, कोई सचखंड है, मुझे आज तक कहीं भी समाधि में दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा कि वो सचखंड तुम्हारे इस अंड और पिंड से पार है, लेकिन नहीं माने शिव जी। अब इनको परमात्मा ने जान लिया कि तो अब बुद्धि फिर गई, इनकी नहीं मानेंगे। तो पुणात्मा इस काल भगवान ने इन अपने तीनों पुत्रों से लीलाएं करवाई और स्वयं ही इनके रूप में आकर के स्वयं ही ये लीला कर देता है, या इनके अंदर प्रवेश करके कुछ ऐसे कर्म करता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के सतर के नहीं होते। जिस कारण से इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की महिमा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होगी। प्रत्येक व्यक्ति इनसे प्रभावित होने लग गया और इनको अजरो अमर सर्वेश्वर परमेश्वर मान लिया। जैसे कोई समाधि लगाने की चेष्टा करता है, समाधिस्थ होने की चेष्टा करता है हठ योग करके, ये काल बहुत ही जबरदस्त षड्यंत्र रचे हुए हैं। ये क्या करता है, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है समाधि दशा में, और वो कूदता फिरे फिर छलांग लगाता फिर मुझे मैंने भगवान पा लिया। और ये ब्रह्मा जी ही, ये रजगुण ब्रह्मा जो उनके पास देवता रूप में है, वो कहता है कि यही परमात्मा है, ये अपने आप को छुपाए हुए है। और किसी अन्य साधक को वो विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, जो वो हठ योग डड़े ढो रहा होता है, समाधि लगा रहा होता है, वो फिर ये कहता है कि ये विष्णु जी ही परमात्मा है, यही सर्वेश्वर है, जगत गुरु है, परमेश्वर है, सब ब्रह्मांडों के रचयिता है, ये अपने आप को छुपाए हुए है, सारी सृष्टि के रचनहार यही है। क्योंकि वो पक्का गवाह बन जाता है काल का, समाधि दशा में देख कर उनसे वार्ता होती है, जैसे स्वप्न में बातें हुआ करती हैं, ऐसे समाधि दशा में भी इष्ट से बातें हो जाती हैं। और किसी को शिवजी रूप में दर्शन दे देता अपने पुत्र शिवजी के रूप में, वो फिर कहता है कि ये शिवजी ही सदा शिव हैं, यही अजरो अमर हैं, यही काल रूपी ब्रह्म है, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ। इस काल ने यो नौवन सूत अज्ञान का न्यो उलझा रखा है। इसी भ्रम में ब्रह्मा जी सोच लेते हैं, मैं सर्वेश्वर हूं, मैं सृष्टि रचता हूं, सब मेरे ही अधीन है। उधर से विष्णु जी उसी किसी ऋषि के कहने से ये मान बैठता है कि मैं ही सर्वेश्वर हूं, और इसी कारण से इन दोनों का युद्ध हो गया। एक बार ब्रह्मा जी गया विष्णु जी के पास, क्योंकि एक दो ऋषि ने आकर उसका पंप मार दिए कि आप ही सर्वेश्वर हो, आप सब सृष्टि के रचनहार हो, आप सृष्टि के कर्ता हो, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो ब्रह्मा जी में फूक बरगी, वो चल पड़ा वहां से विष्णु जी को ये दिखाने के लिए कि मैं सृष्टि रचनहार हूं। अब विष्णु जी शेष सैया पर लेटे थे, लक्ष्मी जी वहां बैठी थी, उनके सारे अनुचर सेवक गरुड़ा जी वहां बैठे थे। ब्रह्मा जी जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि तो टीटी बढ़ रहा था, और विष्णु जी वैसे अपने आप को ये समझ रहे कि मैं सर्वेश्वर हूं। काल ने दो चार ऋषियों के द्वारा उसका पंप मरवा रखे थे। अब वो लेटा लेटा देख रहा है, आओ भगत नहीं की ब्रह्मा जी की विष्णु जी ने। तो ब्रह्मा जी कहता है, ओ पुत्र देख मैं तेरा बाप आया हूं, और तू एक शैतान की तरह, एक कृतघ्नि की तरह तू मेरा सत्कार नहीं कर रहा है। विष्णु जी कहते हैं कि तेरा मुंह ये बांका क्यों हो गया, तेरे माथे पर चौड़ी क्यों पड़ गई बेटा, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। अब इस बात पर कि मैं तेरा बाप हूं, नुका मैं तेरा बाप, वो गुट बाज गया दोनों भगवाना का, ब्रह्मा और विष्णु का। और पुण्यात्माओं आमीन न पूजा करते, इनकी बुद्धि का स्तर तो चौथी कक्षा के बालक जैसा है, ऐसा इनका व्यवहार है। तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे लड़ते हैं, अध्यापक के पास जाते हैं, अध्यापक जी पूछते हैं क्यों बेटा क्यों लड़ रहे थे, एक कहता जी यू नो बोला मैं तेरा बाप है, वो दूसरा कहता ना जी पहले यू बोला मैं तेरा बाप है, इसलिए दोनों कुर्ते पड़वा रखे। ये ऐसी सतर की, ऐसी बुद्धि के सतर के भगवान थे, जिनकी हम पूजा करके मोक्ष की इंतजार करते थे और अपना कुछ आचरण सुधारना चाहते थे, इसलिए समाज बिगड़ गया, कति नास्तिक होता जा रहा है। तो पुण्यात्माओं आपको प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे लड़ाई हुई। ये देखिएगा शिव महापुराण इंदी टीका सहित भाग एक, इसमें संस्कृत भी साथ है, क्योंकि इंदी टीका करने वालों ने केवल अपने हिसाब की बातें अनुवाद में ले ली, बाकी छोड़ दी। श्री शिव महापुराण विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई, इतने। अब विद्वेश्वर संहिता आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये है विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण, ये 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता भाग एक अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, जो भगवान शिव के वाहन हैं। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उसी समय देखिए इनके पंप न मारा करते ऋषि, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, और फिर इसके वचन देखिए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए विष्णु जी के पास, सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, ब्रह्मा जी तुम कौन हो? ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं पता तुम कौन है, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, अभिमानी व्यक्ति की तरह तुम लेटे हुए हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे बेटा उठो, देखो देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में क्रोध हुआ, लेकिन ऊपर तय लोग दिखावा शांत रही, अंदर छो उठ गया, परंतु बाहर से शांत रही और बोले, हे वत्स, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। वार मारे देवताओं, इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बकर क्यों हो रहा है, यानी तो गुस्सा क्यों कर रहा है, टेढ़ी आंख करके चौड़ी गेर रहा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है, हे पुत्र मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण मुग्ध होकर विवाद करने लगे, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हो गए। इवागे देखिए और देवताओं के श्रीतर, वह तो लड़न लाएंगे दोनों जड़े, और देवता आकाश से अरुण को साबा सीधे हैं। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे, शाबाश लड़ो, है शाबाश, जो कर जोटे लड़ाया करे कई बगामा में और कलकी दिया कर, हाँ, हाँ। तो नौके ऊपर वो देवता मारे, फिर नौके है शाबाश फूल बरसावे कर दो काम, जबकि पुण्य आत्माओं अभी न देवता कवा या बालक कहें, देवता थे तो वहां आते, उनके बीच में खड़े हो जाते हैं, प्रभु यदि आप ही ऐसा चरित्र करोगे तो और हमारे जैसों का क्या हाल होगा, आप ऐसा ना करो। उनका बीच बचाव करना चाहिए था, और वो फूल बरसाओ ने कहा शाबाश कर दो काम। अपने आत्माओं, परमात्मा के ज्ञान की रोशनी में आज हमें दिखने लग गया, नहीं तो हम भी इस अज्ञान के आधार से इस काल के लोक में इस बबूल के बन को हम बाघ समझकर घूम रहे थे कि शायद कहीं कोई आम मिल जावे, यानी कोई सुख प्राप्त हो, सपने में भी नहीं। यहां सुख नाम की चीज नहीं, आप सुख से अपरिचित हो। परमात्मा बताते हैं कि बारू बुरा जान चाटत हो रही, ओए होए, अब संकेत बतेरा पुण्यात्माओं को इतना ही काफी है कि तुम यहां सुख मानकर इस जैसे कोई बुरा जानकर रेही खा रहा हो, रेही जैसे जमीन के अंदर जो खराब जमीन हो जाती है जिसमें रेही लग जाती है, उसमें सफेद सफेद उसके ऊपर एक बुरा जैसा ही एक बुरादा सा होता है, उसको रेही बोलते हैं। अब क्या कहते हैं कि तुम बुरा जान चाटत हो रेही। अब जिसने बुरा ना खाई तो अरे ये मिल्ला जहां देखा वही रेही, जहां देखा वही वो नमक, तो यही मान लिया कि यही होगा वो बुरा। अब परमात्मा कहते हैं तुम जैसे किसी का संतान नहीं, वो ने सोचा है भगवान संतान हो जा सुखी हो जाऊंगा, संतान हो पाचा पूछ लियो उस पर कितना सुखी हो। जिसके पास पैसा नहीं है वो ने सोचा है भगवान पैसा हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, पैसे वाला ने पूछ ले जो सपने में सुख होते हैं, सपने में सुख नहीं पैसे वाले ने। तो पुणात्मा कोई नौका मैं राजा बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, सुखी हो जाऊंगा, सुख तो आसपास भी कोई ना, उन्हें कहते सपने में भी सुख है ना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एमएलए एमपी को ये सत्कर मान लेना, क्योंकि यहां सुख है ही नहीं, सुख हो कहां से, कभी कोई टेंशन। जैसे एक परिवार का एक मुखिया 5-7 सदस्यों के अरेंजमेंट में कितनी टेंशन होती है उसको, और एक राजा अपने क्षेत्र की प्रजा का पिता होता है तो उसने जो व्यवस्था करनी होती है इतने व्यक्तियों की, कितना सड़क बनवानी है, कितना सिंचाई की व्यवस्था करनी है, कहीं बिजली की व्यवस्था करनी है, और कहीं फिर पीछे से राजकाज में गड़बड़ी की चिंताएं सताती रहती हैं। ये तो सांझ ने 3-5 दारू पी का जब आंख लग गई इनकी, और सुते उठते फिर हुआ गिगी बंदी रहे। ये तो आप जी ने हमने दिखा ये टू 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 करती इनके पाछा आगे कार भागती, इन सपने में सुख होने। तो परमात्मा के बताना चाहो तुम इन सुख मान रहे हो, और कहते बुरा जान चाटित हो रही। अब समझ लेना सतलोक में कितना सुख है, यानी रे ही क्या है, नमक, और भी बिगड़ा हुआ स्वरूप नमक का, और बुरा ये बिल्कुल मीठा मधु। तो इतना अंतर है सतलोक और यहां के सुख में। अब हम इतना दिखाएंगे, ज्यादा नहीं समझ, बहुत कुछ वर्णन आ गए। अपुण्य आत्माओं, इन तीनों भगवानों के पास परमात्मा गए थे और इनको ये 5 नाम दिए थे, लेकिन इन्होंने अपनी अपनी मर्जी से एक एक नाम सेलेक्ट कर लिया। ब्रह्मा जी ओम नाम ही जपते हैं, विष्णु जी हरियम जाप करते हैं, और शंकर शिव जी सोहम जाप करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। अब यह बात है, और 600 साल पहले कोई नौके कबीर जी नौके हैं कि शिव जी मेरे दिए मंत्र का अभ्यास करता है, और हमने उनको नाम दिया, सिर फोड़ दे ये ब्राह्मण गुरु जनता ने पाछा ला के और बुरा हाल करवा दिया परमात्मा का। लेकिन तो मालिक थे के बिगाड़ सके थे, अपने कर्म बिगाड़ दिए उन्होंने तो। अब उस समय जो की हुई लीला और उसने दिया हुआ ज्ञान आज हमारे सब सदग्रंथों में प्रमाण, तो अब अपने आप सिद्ध हो जाएगा कबीर भगवान। तो पुण्यात्माओं, अब परमेश्वर ने पांचों वेद इस ब्रह्म को दिए थे और इस ब्रह्म ने एरा फेरी कर दी। चार वेद तो अपने मुख श्वासों से निकाल दिए और पांचवा वेद निकला, उसने देखा उसमें, क्योंकि चारों पांचों को उसने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कबीर जी ने इसके अंतःकरण में फीड करे थे। और फिर मालिक को पता था कि मेरे बच्चों को ये बुलावेगा और वेदों का ज्ञान ये देगा तो उनको ज्ञान हो जाएगा और वो भक्ति ठीक करते रहेंगे, उनकी दुर्गति घनी ना होगी। तो इस काल ने पहले खुद पढ़े हुए, उसने देखे पांचवा वेद जो है लास्ट वाला पांचवा पार्ट, इसमें इसकी पोल खुल रही थी, इसने उसको नष्ट कर दिया और चार वेदों को ब्रह्मा जी को दे दिया। अब उन चार वेदों को फिर ज्ञान कौन करावे? इन ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्मा जी जब वेदों का अनुवाद करने की चेष्टा करने लगे, स्वयं ही काल उसमें प्रवेश करके उन शब्दों के अर्थ गलत करवा गया। इसलिए आज तक वेदों के आधार से ये ऋषि महर्षि मानते रहे कि वेदों में परमात्मा को निराकार लिखा है, वेदों में परमात्मा को साकार लिखा है, मनुष्य सदृश लिखा है, मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत देव, मनुष्यवत शंभू, बहुत प्रकार से संबोधित किया गया है। और वो परमात्मा सहशरीर है, सतलोक से गति करके आता है, चल कर आता है, सहशरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो ऊपर तीसरे धाम में रहता है। इतना स्पष्ट है वेदों में, फिर भी उसको निराकार बताते रहे। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था बुझ छेड़े किसान, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब वेदों के पढ़ने वालों को आज तक गुरु नहीं मिले, और गुरु मिले थे तो इन्हें स्वीकार नहीं किया, ना ब्रह्मा जी ने किया, ना विष्णु जी ने किया, ना शिव जी ने किया। इसलिए अभी तक वेद ज्ञानहीन थे। अब ब्रह्मा जी ने पुराणों की रचना करते समय, ब्रह्मा जी शिवपुराण में वर्णन कर रहा है, क्योंकि जैसे इस शिवपुराण में जो अभी आपने देखी थी संस्कृत हिंदी सहित, इसमें इसी प्रकरण में जो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में युद्ध हुआ, आगे चल के ये काल अपने पुत्र शिव रूप में प्रकट हो जाता है और दोनों को धमकाता है, ज्ञान देता है कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम परमात्मा नहीं हो। ये देखिएगा जो अभी आपको दिखाया था शिव महापुराण हिंदी टीका सहित, संस्कृत साथ में इसके, और ये कहां से प्रकाशित है, श्री शिव महापुराण विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का युद्ध हुआ, फिर बीच में इस काल भगवान ने शिव रूप में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, इनके बीच में एक लिंग सफेद प्रकाश में एक खंभा खड़ा कर दिया। अब यहां देखिएगा ये 17वें पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 9वां अध्याय, पहले हमने 6ठे में पढ़ा था, 9वें अध्याय में क्या कहा है, नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने उन नमर हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, जीवाकर उठाया और फिर दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, किसने, उस काल ने शिव रूप में प्रकट हो गए, मेरे सकल यानी साकार निष्कल निराकार भेद दो स्वरूप हैं, भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। अब काल कहता मेरे से ऊपर कोई भगवान नहीं, इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है, मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को इस तव की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम प्रभु नहीं, तुम स्वामी नहीं हो सकते, प्रभु नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ब्रह्मा और विष्णु को कहा है, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया, अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं, मैं ही परब्रह्म हूं। देखिए झूठ बोले नरी, मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा ही सकल अकल रूप है, कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है, सर्वव्यापी होने से मैं जगत के वर्धक होने से ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म के सब क्षमता और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं, मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है। आगे देखना दूसरी बात है। अब ये काल कहता है, अब यहां है ये दसवां अध्याय 18वां श्लोक विद्वेश्वर संहिता भाग एक का, ये नौवां यहां अंत हो जाता है, नौवां अध्याय यहां समाप्त हो गया, ये दसवां शुरू हो गया। इस दसवें के यहां पर नीचे अब दसवें श्लोक में युकाल कहता है शिव रूप में प्रकट होकर, हे पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है। अब वो काल कह रहा है ब्रह्मा विष्णु को कि पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया